Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Listeners, welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra karyakram mein aapka swagat hai. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेज एक्सटेंड विनिंग स्ट्रीक फॉर फिफ्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स क्लोजेस अबव 76,900। निफ्टी एंड्स एट 23,350। Most Asian indices register decline. European indices trade in negative territory. And India's foreign exchange reserves rise by $305 million to over $654 billion during last week.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर बाजारों में लगातार पांचवें सत्र में तेजी का दौर। सेंसेक्स 76,900 से ऊपर और निफ्टी 23,350 के स्तर पर दर्ज। एशियाई बाजारों में गिरावट का दौर। यूरोपीय शेयर बाजारों में शुरुआती रुझानों में भी मंदी नजर आई और 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 654 अरब से अधिक दर्ज हुआ। नजर डालते हैं सेंसेक्स पर। घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में आज मजबूती का दौर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग एक माह के उच्चतम स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की तेजी से 557 अंक उछलकर 76,905 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% की बढ़त से 160 अंक बढ़कर 23,350 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2% से अधिक का उछाल दर्ज हुआ।
The benchmark domestic equity indices today ended week's last trading session on a strong note, extending their winning streak for the fifth straight session amid buying across most sectors and renewed optimism over easing foreign selling. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex advanced 557 points to close at 76,905. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 160 points to settle at 23,350. The broader market indices at the BSE also logged gains. The mid-cap index climbed over 1.1% and the small-cap index jumped over 2%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, NTPC as well as Bajaj Finance both advanced over 2.7% each. Kotak Bank gained over 2.4% and Axis Bank increased more than 2.1%. Conversely, among the top laggards, Infosys dropped over 1.3%, Tata Steel slipped 1.1% and Mahindra & Mahindra lost over 1%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended in positive territory. In the top gainers, oil and gas added over 2.2%, utilities rose more than 2.1% and telecommunication added 1.9%. Conversely, the top laggards were consumer durables, which slipped almost 0.8% and metal lost over 0.4%. Overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,823 companies advanced, 1,213 declined, and 126 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 33 companies hit their 52-week high, while 49 hit their 52-week low. Puneet, the stock market rose today once again. What do you think are the key factors behind today's rally, And what was the contribution of the small cap and the mid cap segments?
So, Sarbjit, after quite a sharp fall in the markets over the last 5 months, actually, we saw some kind of a rebound, and markets rose by almost 4.5% in this week. And this is the largest gain, as you mentioned, in the last 4 years in a particular week.
That's right.
And compared with Nifty, the small cap and mid cap stocks actually gained a lot more because they were also the biggest losers in the downfall that we saw.
Right.
The mid cap index was up around 6% for the week, and small cap index was up by about 9%. So you can see that the gains were pretty sharp almost across the board. And I think one of the reasons, of course, was very attractive valuations that the markets were offering to investors. We have seen selling by foreign investors over the past few months. That also came to kind of a halt in the midweek. We saw some buying by FIs yesterday and today. So clearly, I think the valuations became so attractive that value investors who were sitting on the sidelines with cash, they came to the market, they started buying. We also saw some money being rotated out of Chinese markets because we saw some pullback in Hong Kong and China, Chinese markets. There was a fall in Hong Kong market, and we saw some money being shifted from overseas markets to India.
Puneet, agar bazaar ke dasha ko dekhen, kya hamare paas ab ye manne ke liye ya umeed karne ke liye ye sahi samay hai jab hum ye kahen ki bazaar mein bottom out ho chuka hai, kyunki लगभग एक सप्ताह से पांचवें कारोबारी सत्र में आज बाजार जो है वो पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है, या सिर्फ ये कहें कि अभी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने लगातार घरेलू संस्थागत निवेशकों के मुकाबले बाजार में खरीदारी करी है?
अमित, देखिए, मुझे लगता है कुछ राहत की सांस तो जरूर आई है निवेशकों को, क्योंकि काफी भारी उन्होंने लॉसेस देखे, काफी भारी गिरावट देखी लगातार पिछले 5-6 महीने से, और अब एक रीबाउंड से एक उम्मीद जगी है कि यहाँ पर बाजार में जो वैल्यू बायर्स हैं, और जैसे मैंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो लगातार सेलिंग कर रहे थे बाजारों में, उन्होंने अपनी रुख बदला है और उन्होंने थोड़ी बाइंग शुरू करी है, तो एक उम्मीद बंधी है कि यहाँ पर बॉटम का मार्केट का जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो हमारे सामने है। लेकिन जो ज़रूरत है वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फैक्टर्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो अनसर्टेनिटी है ट्रेड को लेकर और यूएस टैरिफ्स को लेकर, उनका सवाल, उन सवालों का जवाब अभी मार्केट ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लग सकता है, शायद थोड़ा वोलेटाइल रहे बाजार यहां पर अगले सप्ताह, हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा एफआईआई की सेलिंग हो, कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले में हैं। पर जैसा आपने कहा कि शायद जो बॉटम है मार्केट का, यदि मैं कहूँ निफ्टी के टर्म्स में, तो जो 21,800 यानी 22,000 का जो निफ्टी का लेवल बना था पिछले सप्ताह, मुझे लगता है वो भी बॉटम कह सकते हैं उसको।
एक चीज और देखा जाए, जैसे कल हम कुछ क्षेत्रों में देखें तो सेक्टर वाइज क्या होता है, एक दिन तो उसमें मजबूती नजर आती है लेकिन अगले ही दिन वो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली में भी बदलती है। क्या निवेशक अभी भी जरूरत से ज्यादा सतर्क हैं, या अभी भी उसमें वो भरोसा कायम नहीं हो पाया है कि वो एक लगातार लंबी पोजीशंस बना पाए?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो निवेशक हैं वो क्विक प्रॉफिट, उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि यदि वो लंबी पोजीशन बनाते हैं क्या वो पोजीशन की प्रॉफिट में रहेगी। तो अभी, और ये एक नेचुरल हैबिट है, ऐसा होता है जब बाजारों में भारी गिरावट हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है इन्वेस्टर्स का, और इन्वेस्टर्स का जो रुख होता है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का रहता है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर एक दिन हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तेजी देखते हैं, दूसरे दिन हमने आईटी क्षेत्र में तेजी देखी, उसके अगले दिन वो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वोलेटाइल मार्केट्स हैं, दे नीड टू फाइंड अ बॉटम टू गेन सम कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा।
जैसा ये खासतौर पर जैसे कि कल मेटल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, कल मेटल क्षेत्र ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन आज वहां पर मुनाफा वसूली हो जाती है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम देखते हैं तो वहां से मेटल से संबंधित जो खबरें हैं वो लगातार उत्साहजनक हैं और उसमें निरंतर तेजी बनी हुई है, उसके बावजूद अगर यहां मुनाफा वसूली होती तो ये भरोसा कायम करने में अभी भी बाजार थोड़ा सा सतर्क है या कहीं ना कहीं संशय में है, या हमें इसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी ध्यान पड़ेगा क्योंकि हम लगातार चौथी तिमाही के नतीजे की भी आहट अब आने लग जाएगी थोड़े दिन बाद ही, और वहां से कुछ क्या अच्छी खबरों की उम्मीदें उतनी नहीं है जितने की सोचा गया है?
तो अमित, इसमें कई पहलू आपने उनको टच किया अपने सवाल में. देखिए, पहली बात तो यह है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे मेटल क्षेत्र की हम बात करें तो बहुत ही ग्लोबल कमोडिटी है. ऐसा नहीं है कि भारतीय फैक्टर्स ही उसको डिटरमिन करते हैं, उनके प्राइस ट्रेंड्स को. हम देखते हैं कि उसको जो यूएस में टैरिफ्स की बात चल रही है, चाइना की डंपिंग की बात रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत में लगी है, तो कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस क्षेत्र के ऊपर असर पड़ता है. और न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है. एक दिन हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं, दूसरे दिन नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं. तो मुझे लगता है कि इस सभी का बाजारों पर काफ़ी असर पड़ता है और शॉर्ट टर्म में उसका ऊपर जो मुनाफा वसूली कह सकते हैं या निवेश कह सकते हैं वो उसमें रहता है. इसी तरह से हमने आईटी क्षेत्र में भी देखा कि पहले एकदम अचानक बहुत भारी गिरावट आई थी और बड़े बड़े शेयर्स, जो हम बड़ी कंपनियों की बात करें, वहाँ गिरावट देखी थी. पर अब कुछ एक्सेंचर की कल गाइडेंस आई है, वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना है. तो नॉर्मली जब मार्केट्स थोड़ी अनसर्टेन होती हैं, जब मार्केट्स की में थोड़ा अनिश्चितता होती है, तब हम देखते हैं कि इस प्रकार का ट्रेंड रहता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम होती है.
एक चीज़ और, पिछले वर्ष, अगर इस वित्त वर्ष की जो चालू वित्त वर्ष है उसमें चूंकि सरकार का बजट जो है वो जुलाई में आया था, तो वो तकरीबन उस बजट का असर हमको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के आसपास ही नज़र आया. और आने वाला जो वित्तीय वर्ष है यानी 2025-26 का, उसमें सरकार जिस तरह से संसद में भी बजट पास कराने के प्रति बहुत तेज़ी से कदम उठा रही है, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि सरकारी जो निवेश है वो अर्थव्यवस्था की धुरी है हमारी, तो वहाँ से अगर सरकारी निवेश बढ़ता है तो हमें आने वाले वर्ष में बेहतर उम्मीद नज़र आती है. और चूंकि अगले ही कुछ दिनों में हम मौद्रिक नीति में भी फेरबदल देखेंगे, जहाँ पे आप जैसे विशेष विश्लेषकों ने ये भी पूरी पूरी उम्मीद जाहिर करी है कि अच्छी खबरें तो शायद इंतज़ार में ही है.
ठीक बात है आपकी. देखिए, जो अगर हम पिछले वर्ष को देखें तो वहाँ पर जो हमारी उम्मीद थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, करीब 7% की एक उम्मीद थी कि जीडीपी ग्रोथ रहेगा दर, लेकिन वो थोड़ा अंडर परफॉर्म किया इकोनॉमी ने. बीच में तो बल्कि एक स्केयर हुआ जब 5.8% जीडीपी ग्रोथ का रेट आया, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि जो पूरा वर्ष का जो जीडीपी ग्रोथ आएगा वो करीब 6.5% के आसपास वो रहेगा. आने वाले वर्ष के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 6.5% की प्रोजेक्शन करी है और स्टेबल इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन करी है. तो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है. लेकिन ये फैक्टर्स हम, मैं दोबारा से ये अंडरलाइन करना चाहूँगा कि ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में क्या होगा, वहाँ पर नीतियाँ क्या रहेंगी, मॉनिटरी पॉलिसी क्या रहेगी फेडरल रिजर्व की, ये सब चीज़ें आज की जो ग्लोबलाइज इकोनॉमीज हैं उसको असर डालती हैं. तो और मुझे लगता है कि जीडीपी के ऊपर प्रेशर रहेगा, जीडीपी ग्रोथ पर आने वाले वर्ष में. तो डेफिनेटली हम एक यहाँ मॉनिटरी पॉलिसी में देखेंगे असर आएगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 25 बेसिस पॉइंट्स या 50 बेसिस पॉइंट्स का कट देख सकते हैं अप्रैल की जब मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी. तो कुल मिलाकर ये सब फैक्टर्स प्ले करेंगे. अगेन आई वुड लाइक टू से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि ये अल्टीमेट शेप ऑफ थिंग्स क्या होगा, लेकिन मार्केट जो है वो इसी अनसर्टेनिटी को लेकर रिएक्ट कर रही है.
25 से 50 बेसिक पॉइंट्स की आपने जो संभावनाएं जाहिर करी हैं, उम्मीद जगाई है, क्या सिर्फ यही वजह कि बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता की अभी भी कहीं ना कमी है और फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों को बरकरार रखा है, ये दोनों के संबंध में ही ये उम्मीद है, या इसके अलावा सरकार भी चाहती है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो बढ़े? और इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ को खबर इससे भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज के बाजार में भी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी FIIs वो नेट बायर्स रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो नेट सेलर्स रहे हैं.
तो देखिए, जो जो मॉनेटरी पॉलिसी या सरकार की नीति का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहती है. वो जानते हैं कि थोड़ा पीछे लिक्विडिटी टाइटनेस थी बहुत ज़्यादा, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आप जानते हैं, VRR वेरिएबल रिवर्स रिपो के थ्रू करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया था इकोनॉमी में सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ को. और जो सरकार की नीतियाँ भी रही हैं, यदि आप फिस्कल पॉलिसी भी देखें, टैक्स पॉलिसी को देखें, तो वहाँ भी थोड़ा सा ईज किया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो कंज्यूमर है उसके हाथ में पैसा रहे. तो क्लियरली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज भी होंगी, वो भी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी. और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं वो थोड़े से स्टेबलाइज होंगे.
इसके साथ एक चीज, जो हमारा जो अर्बन एरिया था वहां पे जो परचेसिंग पावर थी या वहां की जो परचेसिंग के आंकड़े थे और ग्रामीण क्षेत्रों से, उन दोनों में लगातार दोनों जगह गिरावट आ रही थी. अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से मांग नहीं निकलती, खासतौर पे कैपिटल गुड्स की, ये कितनी चिंताजनक बात हो जाती है, क्योंकि कंपनियां अगर रोजमर्रा की जो जरूरतों की चीजें हैं अगर उसकी बिक्री में गिरावट है तो क्या माना जाए, कि उपभोक्ता के हाथ में पैसे नहीं है या वो अभी भी बहुत ज्यादा सतर्क है और उसकी बाकी जरूरतें ज्यादा हैं?
अमित देखिए, जो अभी तक आंकड़े हमारे सामने आए दिसंबर तक के, और एफएमसीजी कंपनीज ने जो हमें गाइडेंस दी
जी,
उसमें उन्होंने कहा था कि रूरल डिमांड स्लो हो रही थी, लेकिन जो लेटेस्ट गाइडेंस है एफएमसीजी कंपनीज के द्वारा वो ये कह रही है कि रूरल डिमांड दोबारा से पिकअप कर रही है। तो इसी वजह से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हम जीडीपी नंबर्स देखेंगे वो बेहतर होंगे, क्योंकि रूरल डिमांड जो है वहां पर एक रिकवरी है
जी। एक छोटी सी बात इसका, तो क्या ये मानने के पर्याप्त कारण है कि मार्च के बाद हमें जीएसटी के आंकड़ों में भी एक सकारात्मक और बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे?
देखिए, जीएसटी के आंकड़े काफी रोबस्ट रहे हैं और हमने करीब करीब 9-10% ग्रोथ हमने जीएसटी में एवरेज देखी है
जी।
मेरी उम्मीद है कि ये ग्रोथ ऐसी ही रहेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9-10% ग्रोथ उसमें रहेगी।
चलिए निर्भर डाल देते हैं, रुपये की स्थिति कैसे रही? अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 39 पैसे की मजबूती से 85.98 रुपए प्रति डॉलर रहा। हालांकि डॉलर इंडेक्स 103.9 के स्तर पर दर्ज हुआ। रुपए के बारे में खासतौर पर छोटी सी मैं जानकारी जरूर चाहूंगा, तकरीबन 86 रुपए डॉलर के आसपास है। रुपए में निरंतर दबाव है, इतनी तेजी से रुपए में हुआ है, क्या ये वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले इस स्तर को आप कैसा आंकते हैं?
देखिए, एक तो रुपए में पहले हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी और पिछले लेकिन सप्ताह अगर आप देखें तो थोड़ी रिकवरी आई, बिकॉज डॉलर इंडेक्स जो था वो करीब 105-106 से गिरकर वो 103.9 पर आया। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स और ट्रेड टेंशन जो हैं वो भारतीय अर्थ को रुपए को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पर मेरी उम्मीद है कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टेबल रहेगा। जो वॉलिटिलिटी थी करेंसीज में इंटरनेशनली, उन सभी में अब कुछ कमी आई है।
चलिए भारतीय बाजारों के बाद नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.2%, चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक 1.3% की गिरावट से बंद हुआ। जापान का निक्केई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक मामूली नुकसान से बंद हुए। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% की बढ़त से लगातार 5वें सत्र में तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मंदी नजर आई। सत्र के दौरान लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.6% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
US stocks closed with modest losses on Thursday in a choppy trade as investors gauged the latest round of economic data and the Federal Reserve's policy statement against tariff concerns. The Nasdaq composite slipped to over 0.3%, S&P lost 500, 0.221%, and the Dow Jones Industrial Average ended nearly unchanged. Earlier, Labor Department data showed that weekly initial jobless claims increased slightly last week. Initial claims for state unemployment benefits rose by 2,000 to a seasonally adjusted 2,23,000 for the week ended on 15th March. Puneet, very briefly, how well-founded are the tariff concerns? And, you know, the 2nd April seems to be a deadly deadline. And what's its impact on the US stock market?
So you really well put it by saying the deadline on April 2nd is really deadly.
That's right.
I think it's deadly for the global trade.
Right.
And not just for the markets. I think everybody is very, very concerned what shape will finally emerge out of these US tariffs, so-called reciprocal tariffs. Because they're not directed towards a particular country. They're almost global tariffs. They will be probably imposed against all countries and economies across the board.
Right.
So clearly, global trade is going to take a hit if these tariffs are imposed, and all economies will of course be affected negatively. I hope that it will not play out like this, but clearly this is a matter of concern for us. If you see the market, the US markets have been very volatile in the last 10 odd days, because in anticipation and the flip-flops, you know, by the US administration over the implementation of these tariffs. So clearly markets have no clarity, they're not very sure about it. They go with the flow, news flows. On days we get positive vibes from the US administration, on certain days it is negative, and the markets are behaving like that.
तो क्या एशियाई और यूरोपीय बाजार भी लगभग लगभग इसी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं? अगर वहां पे भी गिरावट है तो वो भी इसी संशय में है कि अमेरिका का रुख कैसा रहेगा, वहां पे जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो कितना उनके ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक असर डालेगा, क्योंकि यूरोपीय बाजार भी उसी के नक्शे कदम पे हैं कहीं ना कहीं।
अमित देखिए, इस पूरे जब ये घटनाक्रम चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो एक नई टर्म उभर कर आई है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूएस एक्सेप्शनलिज्म। यानी जो यूएस मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स हैं या ग्लोबल एनालिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि यूएस मार्केट्स एक्सेप्शनल हैं. एक्सेप्शनल मतलब बिल्कुल अलग हैं वो. और जो दुनिया के बाकी बड़े बाजार हैं, चाहे चीन की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वो बाजारों का जो रुख है और चाइना का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग हो गई है. तो लेकिन मुझे, मैं इस को बात को नहीं मानता. मुझे लगता है ग्लोबल कैपिटल फ्लोज सीमलेस होते हैं, वो एक बाजार से दूसरे बाजार इमीडिएटली फ्लो कर सकते हैं. तो मैं ये मानता हूं कि जो ग्लोबल यूएस मार्केट्स में हो रहा है उसका सीधा सीधा असर नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन वो दूसरे बाजारों से है. आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यूरोप में जब से अमेरिका ने बात करी कि हम नेटो में अपनी कंट्रीब्यूशन कम करेंगे, हमने देखा कि यूरोप में जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज थी उनके शेयर्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए और यूरोपियन बाजार भी अपनी ऊंचाइयों पर गए क्योंकि वहां पर ज्यादा स्पेंडिंग की बात हुई. तो क्लियरली जो ये इंटरप्ले है कि क्या एक तरफ के अगर बाजार या नेगेटिव न्यूज का असर क्या होगा, वो बहुत अलग अलग आयामों में, बहुत अलग डायमेंशन में मिलेगा. तो ये जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव. तो ये बाजार भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि अभी बाजारों में उथल पुथल होना बाकी है.
लेकिन जैसे आपने कहा कि अमरीकी बाजार को बिल्कुल एक अलग मायने में रखा जाने की बात सोचनी शुरू कर दी है, क्या विश्व के जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने भी बीच में धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी जो लोकल मुद्राएं थी उसमें कारोबार करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए थे. जैसे भारत भी रूस के साथ रूबल और रुपए में कारोबार कर रहा है, ईरान के साथ कर रहा है, चीन भी ने भी इस तरह कदम उठाए, वो सफल नहीं हो पाए, हालांकि बहुत असर नहीं डाल पाए.
हाँ, देखिए ये बहुत लंबे अरसे में, आज यूएस डॉलर की हम बात करें जो डोमिनेंट है, यूएस इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है पिछले 250 वर्षों से, 250 वर्ष से यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. उसको रिप्लेस करना कोई ओवरनाइट आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आसान नहीं है.
लेकिन क्या मतलब खटखटाहट शुरू हो चुकी है?
डेफिनेटली एफर्ट्स तो चल ही रहे हैं जी इसको लेकर, लेकिन अभी आसान नहीं है और शॉर्ट टर्म में मुझे मुश्किल लगता है.
चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोयला उत्पादन में 1 अरब टन का आंकड़ा पार करने पर सराहना की है. प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है. इस उपलब्धि के लिए श्री मोदी ने कोयला क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के समर्पण और कठिन परिश्रम की प्रशंसा भी की.
पुनीत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड इट अ प्राउड मोमेंट एंड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन. व्हाट्स योर व्यू ऑन दीज एनहांस्ड लेवल्स ऑफ कोल प्रोडक्शन एंड इट्स रेलेवेंस टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी?
सो सरबजीत, व्हाइल नो लॉट ऑफ पीपल एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट कार्बन फुटप्रिंट रिलेटेड टू कोल माइनिंग एटसेट्रा, द ट्रुथ इज दैट इंडियन इकोनॉमी इज वेरी closely linked to the growth of the coal sector, not only because it is related to the energy needs of the country, because we are, of course, we almost entirely import our energy needs. Petroleum is almost 90% imported by us. So coal is a very important resource that we have for meeting the energy requirements of the country. You'll be surprised that even coal we used to import in very large quantities until about 10 years back. And last 8 or 10 years, there has been effort to increase domestic production of coal. Coal also provides very large-scale employment to people. It generates taxes for states, for central government. So coal mining has been a very important industry for the Indian economy. And I think the Prime Minister, of course, needs to be congratulated also for making this happen, really, in a sense, because we have seen a very significant improvement in regulation related to mining sector. And it is those reforms in mining which have actually led to this outcome, which is a record output.
नवर डालते हैं मुद्रा भंडार पे. 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 654 अरब 27 करोड़ डॉलर हो गया. रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान स्वर्ण भंडार 6 करोड़ 60 लाख डॉलर से बढ़कर 74 अरब 39 करोड़ डॉलर रहा. विशेष निकासी अधिकार यानी एचडीआर 5 करोड़ 10 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 26 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहे. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक का जमा स्तर 28 करोड़ 30 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 43 करोड़ डॉलर रहा. हालांकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 करोड़ 60 लाख डॉलर की गिरावट से 557 अरब 18 करोड़ डॉलर हो गया. मुद्रा भंडार की स्थिति लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि बेहतर इस अवस्था में है, लेकिन इसके बावजूद अगर रुपए पे दबाव आता है, ये क्या दर्शाता है?
अमित, देखिए क्या हुआ था कि पिछले एक वर्ष में रुपए पर बहुत भारी दबाव आया था और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो आप अभी हम करीब 650 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, ये स्तर 700 बिलियन डॉलर था और वहां से भारी गिरावट आई थी. 80-90 बिलियन डॉलर्स की गिरावट रही थी और बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड इम्बेलेंसेज एक्सेट्रा. और तो करीब मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और वो जो एक स्केयर था जब ये भारी गिरावट आई थी एक्सचेंज रिजर्व्स में, तो तो एक ऐसा डर था कि बिकॉज FII सेलिंग कर रही है, FDI में स्लो डाउन हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये गिरावट बहुत ज्यादा हो. तो मुझे लगता है वो अब एक खतरे का जो समय था वो टल गया है. एक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं रिजर्व में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अब हम रुपए में कुछ राहत देखेंगे.
जी,
Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, today highlighted that there are around 10,000 biotechnology startups in India, contributing to an estimated $165 billion bioeconomy. Speaking at the 13th Biotechnology Industry Research Assistance Council Foundation Day, Dr. Singh noted that India is being recognized globally for its remarkable progress in space and biotechnology. Puneet, India is fast becoming a global biotechnology powerhouse with biotechnology startups across varied sectors. Very briefly, how do you see this advancement in terms of the backdrop of Vikasit Bharat?
So clearly, I think we need to, the startups of course are important from two aspects. One is of course the advancement of technology in a particular field, because startups usually accelerate the advancement of technologies in all the sectors that they operate in. Secondly, it also provides large scale employment to youngsters. And I think if you are looking at Viksit Bharat, we are looking at developed India in next 15-20 years, the startup ecosystem has to play a very important role in pushing employment as well as technology advancement in India.
So oil prices fell today. Brent crude was trading over 0.5% down at $71.59 per barrel. WTI crude was trading over 0.4% down at $67.76 per barrel when reports last came in. Puneet, so much of uncertainty in the market, the tariff terror, if we may call it, you know, the trade war and, you know, the volatility in the market, the oil prices surging up and down. How do you see this picture in the backdrop of today's fall in oil prices?
So amazingly, in all this turmoil, oil prices have been relatively stable. And of course, the US policies have been to push oil production in America, which will create global surplus for supply of energy. And I think that is one of the reasons why oil prices have been stable. Also, we're seeing some dilution of sanctions on Russia for export of oil. I think the overall economic system or economic indicators are that oil prices will remain well under control going into the next few years.
नजर डालने सराफा बाजार पे. सराफा बाजार में सोना आज 0.6% की गिरावट से 88,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1% के नुकसान से 98,630 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 0.5% की गिरावट से 88,262 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1% के नुकसान से 98,425 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. पुनीत, सोने और चांदी, आपको भी याद होगा कुछ दिनों पहले तक हम तकरीबन 2000 के, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, जहां पे आज नाइमेक्स की, कॉमेक्स की अगर बात करते हैं, तो $3,052 के आसपास सोना है, जबकि चांदी $34 ऑन्स के आसपास दर्ज हुई है. भारत में सोने के प्रति ललक स्वाभाविक है, सबके लिए है. तो ये जो आंकड़े हैं अभी, अगर चूंकि 1,00,000 के आस स्तर को चांदी पार कर चुकी है, उसके आसपास ही घूम रही है, और ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में अभी भी तेजी की संभावनाएं हैं, और अगर पिछले एक वर्ष की हम बात करते हैं तो सोने और चांदी ने कहीं ना कहीं बेहतर रिटर्न दिया है.
नहीं देखिए, सोना चांदी की जो रिटर्न रही है पिछले एक वर्ष में काफी अच्छी रही है, करीब 25% हम अगर बात करें ग्लोबल प्राइसेस में इंक्रीज आया है. और मुझे लगता है कि जितना भी ग्लोबल हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, टैरिफ वॉर्स की बात करते हैं, ये सारा जो फैक्टर्स हैं, ये गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर करने में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही है. और क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स अभी कहीं खत्म नहीं हुए, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो फियर फैक्टर, जैसे सरबजीत ने कहा टेरर जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका खतरा एक बना हुआ है. तो मुझे लगता है ये ग्लोबल गोल्ड और सिल्वर की जो एक चाह है अमंग इन्वेस्टर्स, अमंग सेंट्रल बैंक्स, वो बनी रहेगी. और ये रेट जो है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आई थिंक मोस्टली दे विल रिमेन स्टेबल.
अगले 3 से 4 महीनों की अगर बात करें तो वहां पे कहते हैं कि सोने चांदी में भी अभी बहुत तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं.
देखिए शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कोई भी फैक्टर हो सकता है तेजी मंदी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड जैसे $3,000 को पार कर चुका है पर औंस, अब वो वहां स्टेबल रहेगा और $34 बड़ा क्रिटिकल लेवल था सिल्वर का, वो भी स्टेबल रहना चाहिए।
पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
यस, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एक्सटेंड विनिंग स्ट्रीक फॉर फिफ्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स क्लोज is above 76,900. Nifty ends up 23,350. Most Asian indices register decline. European indices trade in negative territory. And India's foreign exchange reserves rise by $305 million to over $654 billion during last week. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra.